मनोज तिवारी बोले, पीएम मुसलमानों को निशाना नहीं बना रहे बल्कि संपत्ति छीनने की कांग्रेस की योजना को बेनकाब कर रहे हैं। नमस्कार, दीप्ति सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं अलमीना खातून आज आपको पढ़कर सुना रही हूँ नीलम पांडे की एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंगलसूत्र वाले तंज से मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बना रहे बल्कि कांग्रेस के असली रंग को उजागर कर रहे हैं, जो निजी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को सौंपने की योजना बना रही है। तिवारी तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है, जिन्हें इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में आम आदमी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। हाल ही में मोदी ने चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर हमला किया और आरोप लगाया कि पार्टी मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी ताकि इन्हें घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हो उनके बीच वितरित किया जा सके। इस बारे में पूछे जाने पर तिवारी ने कहा कि पीएम मुसलमानों को नहीं बल्कि कांग्रेस की नफरत फैलाने वाली विचारधारा को निशाना बना रहे हैं। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान देखिए, जिन्होंने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक तो बनाया लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सांसद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने पर सिंह की 2006 की टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से अधिकार मिले। संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए, उन्होंने उस समय कहा था कि पीएमओ ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों का उल्लेख किया था। अपनी स्थिति का बचाव करते हुए तिवारी ने आगे कहा कि अगर हम यह मुद्दा उठाते हैं कि आप दंगे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम मुसलमानों को निशाना नहीं बना रहे हैं बल्कि उन्हें जागरूक कर रहे हैं। किसी की संपत्ति लेकर किसी और को देने की हिम्मत किस में है? इसका मतलब है कि आप गृह युद्ध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तिवारी ने आगे कहा कि बीजेपी ना केवल 2024 का लोकसभा चुनाव बल्कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के साथ राज्य स्तर पर भाजपा सरकार अकेले एक कार्यकाल में दिल्ली की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगी। तिवारी ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेताओं को कोई सहानुभूति नहीं मिल सकती। जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है लेकिन जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। भाजपा 2021-22 दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर आम आदमी पार्टी, जिसका चुनावी मुद्दा स्वच्छ शासन है, को घेरने की कोशिश कर रही है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने के भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए तिवारी ने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल है, हम भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और अदालत बाद में फैसला लेती है। भाजपा के पास ऐसे कई नेताओं के उदाहरण हैं जिन्होंने केवल कुछ आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया। ऐसी नैतिकता दूसरों में क्यों नहीं है? एलके आडवाणी के डायरी कांड को लेकर इस्तीफा दिया था, मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया था। तिवारी ने अपने प्रतिद्वंदी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हमारे भारत के युवा टुकड़े टुकड़े गिरोह के पक्ष में नहीं हो सकते। 2016 में जब जेएनयू के छात्रों ने 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की 2013 की मौत की सज़ा पर सवाल उठाते हुए एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गिरोह का नाम दिया गया था। यह शब्द तब से भाजपा द्वारा अपने कई राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। यह बताते हुए कि टुकड़े टुकड़े गिरोह देश को विभाजित करना चाहते हैं, तिवारी ने कहा, भारत का युवा देश को मजबूत करने के लिए है, कमजोर करने के लिए नहीं। भारत के युवा आतंकवाद और आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि देश को मजबूत करने के लिए है। 2016 के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए और उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कुमार को जमानत मिल गई। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाने की उनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। भारत में न्यायिक व्यवस्था थोड़ी धीमी है, बहुत सारे मामले हैं लेकिन उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। तिवारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी युवा या भारत से प्यार करने वाला कोई भी भारतीय टुकड़े टुकड़े विचारधारा में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करेगा। तिवारी ने कहा कि जो लोग आमतौर पर भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं वे अब बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि विरोधी व्यक्तित्व वाले कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति लड़ रहा है। यह पूछे जाने पर कि पार्टी दिल्ली में सत्ता से बाहर क्यों है, भाजपा सांसद ने कहा, केजरीवाल आए और इतने ऊंचे वादे किए कि लोग प्रभावित हो गए और उन्हें वोट दे दिया, लेकिन लोगों को एहसास हो गया है कि भाजपा के तहत दिल्ली का विकास हो सकता है। आम आदमी पार्टी, जिसने 2013 में अपना पहला चुनाव लड़ा था, ने दो बार निर्णायक बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता। पहले 2015 में 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतकर और फिर 2020 में 62 सीटें जीतकर। इसने 2022 में पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें जीतकर सफाया कर दिया। पार्टी ने पिछले साल दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है। जब वे जनता से वोट मांगने जाएंगे तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि दो दशक में उन्होंने क्या किया। एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दिल्ली में भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनेगी और दिल्ली की समस्याएं एक कार्यकाल में ही हल हो जाएंगी। यह पूछे जाने पर कि क्या आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जैसा सीएम चेहरा नहीं होने से दिल्ली में बीजेपी की संभावनाएं प्रभावित होंगी, तिवारी ने कहा कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता सीएम बन सकता है, जैसा कि कई राज्यों में हुआ है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी द प्रिंट पॉड के अगले एपिसोड में।